वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता थारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक संख्या 11 पृष्ठ संख्या 475 बोलिए। यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। बोलिए शब्दार्थ बोलिए। यतन्तः प्रयास करते हुए, योगिनः अध्यात्मवादी योगी च भी एनम इसे पश्यन्ति देख सकते हैं आत्मने अपने में अवस्थितम स्थित यतन्तः प्रयास करते हुए अपि यद्यपि अकृत आत्मानः आत्म साक्षात्कार से विहीन न नहीं एनम इसे पश्यन्ति देखते हैं अचेतसः अविकसित मनो वाले अज्ञानी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। अब यहाँ धागा लगा कर सब लोग प्रार्थना निकालिए और मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकायां चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामय्यं ददाति सपदंदिकं। वन्देहं श्री गुरो प्रियुत पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश त्रिरूपं साग्र जातं सहगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता त्रिविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास्तादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। इस श्लोक फिर से निकालिए। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं यदंतो योगिनस्य नम पश्यन्ति आत्मन्य वसितम्। यत्न करते हुए योगी इसको देखते हैं। किसको देखते हैं? आत्मा को, अपने आप को देखते हैं। जो भगवान का अंश है, भगवान उसी की चर्चा कर रहे हैं। सातवें श्लोक में भगवान ने कहा ममेवांशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः, कि मेरा अंश है जीव लोक में, जीवात्मा मेरा अंश है, है ना? तो उसकी बात कर रहे हैं भगवान। तो शरीर में स्थित देखते हैं योगी लोग यत्न करते हुए। फिर भगवान कहते हैं यदं तो अपि, यत्न करते हुए भी कौन नहीं देखते हैं? अकृतात्मानो, जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को बस में नहीं किया है वे यत्न करते हुए भी नहीं देखते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की, अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह ये नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, अकृत आत्मानो, तो अपने जो है साधना को अगर उन्होंने अच्छी प्रकार से संपन्न नहीं किया है तो वे नहीं देख पाएंगे। अचेत मतलब बेहोश है, तो वे नहीं देख पाते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रसंग में योगिना शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, अपने को योगी जरूर कहते हैं लेकिन वे तथाकथित योगी हैं, है ना? वे योगी नहीं है ना? योग के नाम पर वे क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं। आगे प्रभु लिखते हैं उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। किसके अतिरिक्त जानकारी नहीं रहती, किसके अतिरिक्त, अपने शरीर को सुगठित बनाने के अतिरिक्त। योग का उद्देश्य केवल क्या जानते हैं कि अपनी आयु को बढ़ाएं, अपने शरीर को सुगठित करें, बीमारियों को दूर करें, बस ये योगी। बहुत बड़े योगी हैं, बहुत बड़े योगी हैं, है ना, योगाचार्य, अपने को योगाचार्य कहते हैं, है ना। तो योग के नाम पर यही चल रहा है। योग का मतलब यही है कि भाई आपकी वृद्धावस्था नहीं आएगी, आपको बीमारियां नहीं आएंगी, हैं? आप स्वस्थ रहोगे, जवान रहोगे। योग तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, वे यतन तो की अकृता आत्माना कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते, केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में जो भक्ति योगी हैं वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। बहुत प्रैक्टिकल इस श्लोक में भगवान जो है बहुत व्यवहारिक बात बताते हैं। योग केवल ये नहीं कि भाई नाम नाम हो जाए कि हम बहुत बड़े योगी बन गए, ये बहुत बड़े योगी हैं, खाली नाम की चीज नहीं है ये। योग का मतलब ये है कि आप इस चीज को समझो, अपने को शरीर से अलग समझो, ये देह अलग है, आप अलग हैं, आप इस बात को समझो, है ना। इस विषय में जो है हम आज ध्रुव महाराज की वो घटना पढ़ के सुनाएंगे जिसमें कि उन्होंने अपने को अपने शरीर से अलग किया, है आत्म साक्षात्कार किया, अपना संबंध भगवान से जोड़ा और भगवान के धाम गए, है ना। तो ध्रुव महाराज ने 36,000 साल तक राज्य किया, अकंटक राज्य किया, पूरी पृथ्वी का राज्य किया। इसके बाद क्या करते हैं, इस प्रकार आत्म संयमी ध्रुव महाराज ने तीन प्रकार के सांसारिक कार्यों को ठीक तरह संपन्न किया। क्या, धर्म, अर्थ और काम, ये तीन कार्य ठीक तरह से किए, अनेक अनेक वर्षों तक किए। इसके बाद अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप दिया, बिल्कुल विरक्त हो गए। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेकार हो गए तब उन्होंने राज्य छोड़ा, नहीं, बहुत वर्षों तक उन्होंने भोगा और फिर उन्होंने अपने पुत्र को सौंप दिया, जबकि बिल्कुल जवान थे और स्वस्थ थे। एवं उत्तमम कालम महात्मा विचलेन्द्रिया त्रिवर्गोपैकम नीत्वा पुत्राया दानपासनम। तात्पर्य रूपा लिखते हैं कि अविचलेन्द्रिय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है कि उनकी इंद्रियां विचलित नहीं हुई, है ना। जैसे यहाँ इस श्लोक में भगवान कहते हैं अकृतात्मानो, अपनी इंद्रियों को जिन्होंने बस में नहीं किया। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कृतात्मा है, कृतात्मा का मतलब अपनी इंद्रियों को बस में करने वाले हैं। न ही इंद्रिय शक्ति घटी, ध्रुव महाराज की इंद्रिय शक्ति नहीं घटी, उन्होंने जब राज्य छोड़ा था तो इंद्रियों की शक्ति उनकी पूरी थी और इंद्रियां विचलित भी नहीं हुई थी। यद्यपि वे बहुत वर्षों तक उन्होंने राज्य भोगा, क्योंकि उन्होंने 36,000 वर्षों तक राज्य किया था, अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे, किंतु उनकी इंद्रियां तरुण थी तो भी वे इंद्रिय तृप्ति में रुचि नहीं रखते थे। दूसरे शब्दों में वे आत्म संयमी बने रहे, मतलब कृतात्मा, वे अपना कर्तव्य सांसारिक ढंग से पूरा करते थे। यही महान भक्तों की व्यवहार प्रणाली है। भगवान चैतन्य के एक शिष्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक धनी व्यक्ति के पुत्र थे, उन्हें सांसारिक सुख भोगने की तनिक भी इच्छा ना थी, किंतु जब उन्हें सूबे का प्रबंध करने को दिया गया
तो वे उसे सुचारू रूप से करते रहे। भगवान गौर सुंदर ने उन्हें सलाह दी कि अंदर से तुम अपने आप को और अपने मन को पूर्णतया पृथक रखो, किंतु बाहर से सारे कार्य उसी तरह करते रहो जिस रूप में होना चाहिए। ऐसी दिव्य स्थिति केवल भक्त ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है, जहां तक कि योगी अपने इंद्रियों को बलपूर्वक बस में करना चाहते हैं, वहीं भक्त पूर्ण इंद्रिय शक्तियों से युक्त होने पर भी उनका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वे उन्हें दिव्य कर्मों में लगाते हैं। अब ध्रुव महाराज ने अनुभव किया, देखो राज्य छोड़ा ध्रुव महाराज ने, क्यों उन्होंने अनुभव किया क्या कि ये दृश्य जगत जीवात्माओं को स्वप्न के समान मोहग्रस्त करता रहता है, क्योंकि ये परमेश्वर की सृष्टि है। मन्यमाने इदं विश्वं माया रचितं आत्मनि अविद्या रचते स्वप्नं गंधर्व नगरोपमं। गंधर्व नगर के समान है ये संसार। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं गंधर्व नगर का मतलब क्या है। कभी कभी घने जंगल में ऐसा लगता है कि बड़े बड़े महल और सुंदर नगर हैं, इन्हें गंधर्व नगर कहते हैं। है कुछ नहीं, जंगल है, इन्हें ऐसा लगता है। इसी प्रकार स्वप्न में भी हम कल्पना से अनेक वस्तुओं की सृष्टि करते रहते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अथवा भक्त ये भली भांति जानता है कि दृश्य जगत क्षणिक है और माया रूप होकर के सत्य प्रतीत हो रहा है। ये माया जाल के समान है, किंतु इस सृष्टि के पीछे सत्य छिपा रहता है और वो है आध्यात्मिक जगत। भक्त तो आध्यात्मिक जगत में रुचि रखता है, उसकी रुचि छाया में नहीं रहती है ना। परम सत्य का बोध होने के कारण वो सत्य की छाया में रुचि नहीं रखता है। जगत क्या है? सत्य की छाया है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, कैसे? परम दृष्टवान वर्तते। आगे अंत में ध्रुव महाराज ने सारी पृथ्वी पर फैले और महासागरों से घिरे अपने राज्य को त्याग दिया। महासागर से घिरा हुआ राज्य मतलब पूरी पृथ्वी त्याग दिया उन्होंने, अपने अपने शरीर को त्याग दिया। मतलब शरीर को भी माना क्या है? माया की सृष्टि है। पत्नियों को, संतानों को, मित्रों को, सेना को, समृद्ध कोष को और सुख से भरे महलों को भी माया की सृष्टि मान लिया। इस तरह वे काल क्रम में हिमालय में स्थित बद्रिकाश्रम के जंगल में चली गई। आत्मस्य पत्य सुहृदं बलमृद्ध कोश मन्तापुरं परिविहारे भुवश्चरम्यां भूमंडलं जलदि मेखले माकलये कालोपसृष्टमिति सां प्रयो विशालम्। तात्पर्य लिखा है कि ध्रुव महाराज के कार्यों से हम ये समझ सकते हैं, यदि कोई किसी भी लक्ष्य को लेकर कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो अंत में उसे वास्तविक सत्य का बोध हो जाएगा। प्रारंभ में ध्रुव महाराज अपने पिता का राज्य प्राप्त करने की धुन में थे, किंतु बाद में वे महाभागवत बन गए और भौतिक सुख से उनकी रुचि जाती रही। जीवन की पूर्णता केवल भक्त ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई भक्ति का 1% भी पूरा करके अपरिपक्व अवस्था में भ्रष्ट हो जाता है, तभी वह उस मनुष्य से श्रेष्ठ है जो इस जगत के सकाम कर्मों में लगातार लगा रहता है। 1% भी अगर भक्ति करी और गिर गया तो वो उससे अच्छा है जिसने भक्ति बिल्कुल नहीं करी और सकाम पुण्य कर्मों में लगा रहा। अब बद्रिकाश्रम में ध्रुव महाराज क्या करते हैं? भक्ति करके अपनी इंद्रियों को पूर्णतः शुद्ध कर लेते हैं, क्योंकि वे स्वच्छ शुद्ध जल में नियमित रूप से स्नान करते थे। वे आसन पर स्थित हो गए और फिर उन्होंने योग क्रिया से श्वास को बस में किया, प्राणवायु को बस में किया। इस प्रकार उन्होंने इंद्रियों को पूर्णतया समेट लिया। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के रूप में केंद्रित किया और इस प्रकार से उनका ध्यान करते हुए वे पूर्ण समाधि में प्रविष्ट हो गए।
तस्याम विशुद्ध करण शिवार विगाहे बद्वासनम जित मरुण मनसा हृताक्ष स्थूले दधार भगवन प्रतिरूप एतन ध्यायन तदव्य रहित विसृजन समाध।
शास्त्र में लिखा है, रूपा लिखते हैं, यहाँ पर अष्टांग योग पद्धति का वर्णन हुआ है जिसमें ध्रुव महाराज पहले से अभ्यस्त थे। अष्टांग योग किसी फैशन के शहर में अभ्यास करने के लिए नहीं बना है। अतः ध्रुव महाराज बदरिका आश्रम गए और एकांत स्थान में योगाभ्यास करने लगे। तो प्रभु जी क्या बताते हैं, ये शहरों में अष्टांग योग नहीं होता है कि कोई फैशन बना ले, आजकल तो यही चल रहा है। उन्होंने अपना मन भगवान के रूप पर केंद्रित किया और इस प्रकार भगवान का चिंतन करते हुए वे समाधि में लीन हो गए। अब क्या हुआ, दिव्य आनंद के कारण उनके नेत्रों से निरंतर अश्रु प्रवाह होने लगा। ये देखो, जैसे योगी की स्थिति जो है आगे बढ़ती जाती है, क्या होता है, निरंतर अश्रु प्रवाह है होने लगा, उनका हृदय द्रवित हो गया और पूरे शरीर में प्रकंप और रोमांच होने लगा। कंपन और रोमांच होने लगा पूरे शरीर में। भक्ति की समाधि में पहुंचने से ध्रुव महाराज अपने शारीरिक अस्तित्व को पूर्णता भूल गए और तुरंत ही भौतिक बंधन से मुक्त हो गए।
भक्ति महाराज भगवती प्रवहन दस्त्र मानंद बात कन्या मुहूर्यमान विक्लिद्यमान हृदय पुल कांचितांगो नात्मा नमस्मर दशा विति मुक्त लिंग।
तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, निरंतर भक्ति में लगे रहने से, जैसा कि नवधा भक्ति में बताया गया है, भक्त के शरीर में विभिन्न लक्षण प्रकट होते हैं। भक्त भीतर से मुक्त हो चुका है, अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होते हैं। जब भक्त को अपने शरीर की शुद्धि नहीं रह जाती तो समझना चाहिए कि वह मुक्त हो गया है, वह शरीर में बद्ध नहीं है। यहाँ पर उदाहरण दिया जा सकता है कि जब नारियल पूरी तरह सूख जाता है, अब ध्यान से सुनिए प्रभु जी क्या बताते हैं, जब नारियल पूरी तरह से सूख जाता है तो बाहरी खोल से भीतर की गिरी बिलग हो जाती है। नारियल टूटा नहीं है, अभी पूरा है नारियल, लेकिन सूखा है तो क्या होता है, अंदर की गिरी अलग हो जाती है। आप हिलाते हो तो हिलती है कि नहीं, हिलाने से पता चलता है कि गिरी बाहर कोष या छिलके से लगी नहीं है। इसी प्रकार जब कोई भक्ति में पूर्णतया लीन हो जाता है तो वह सूक्ष्म और स्थूल शरीरों से सर्वथा विलग हो जाता है। ध्रुव महाराज को यह अवस्था निरंतर भक्ति करते रहने से प्राप्त हो चुकी थी। उन्हें पहले ही महाभागवत कहा गया है, क्योंकि जब तक कोई महाभागवत अर्थात उच्च कोटि का भक्त नहीं बन जाता तब तक ये लक्षण प्रकट नहीं होते। भगवान चैतन्य में ये समस्त लक्षण प्रकट थे, ठाकुर हरिदास में भी ये प्रकट थे और ऐसे अनेक भक्त हैं जिनमें ये लक्षण प्रकट रहते हैं। ये बनावटी नहीं होते, वरन जब कोई सचमुच आगे बढ़ जाता है तो ये लक्षण प्रकट होते हैं। उस समय ये समझना चाहिए कि भक्त भौतिक रूप से मुक्त हो गया है। निस्संदेह भक्ति करते ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। जिस प्रकार पेड़ से तोड़ा गया नारियल तुरंत सूखने लगता है, गरी को खोलते विलग होने में कुछ समय अवश्य लगता है। इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द आया है, मुक्त लिंग, जिसका अर्थ है मुक्त सूक्ष्म शरीर। जब मनुष्य मरता है तो वह स्थूल देह को त्याग देता है, किंतु मन बुद्धि और अहंकार का सूक्ष्म शरीर उसे नवीन देह में ले जाता है। इस देह में रहकर वही सूक्ष्म देह मनुष्य को मानसिक विकास के कारण जीवन की एक अवस्था से दूसरे में ले जाता है। छोटे शिशु की मानसिक दशा बालक से भिन्न होती है। बालक थोड़ा बड़ा होता है और बालक की तरुण से अलग होती है अवस्था, और तरुण की वृद्ध पुरुष से भिन्न होती है। अतः मृत्यु के समय देहों का परिवर्तन सूक्ष्म देह के कारण होता है। मन बुद्धि तथा अहंकार आत्मा को एक स्थूल देह से दूसरे में ले जाते हैं, ये आत्मा का देहांतर कहलाता है। किंतु एक अन्य अवस्था भी होती है जब मनुष्य इस सूक्ष्म देह से भी मुक्त हो जाता है, उस समय जीवात्मा दिव्य या आत्म जगत को स्थानांतरित होने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। ध्रुव महाराज के शारीरिक लक्षणों के वर्णन से पता चलता है कि वे आत्म जगत में यानी वैकुंठ धाम में स्थानांतरित होने के लिए पूर्णतया उपयुक्त थे। हम दैनिक जीवन तक में सूक्ष्म और स्थूल शरीर का अंतर पाते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं, स्वप्न में मनुष्य का देह बिस्तर पर पड़ा रहता है, किंतु सूक्ष्म देह आत्मा जीवात्मा को दूसरे लोक में ले जाता है, किंतु स्थूल देह को बनाए रखने के लिए सूक्ष्म देह वापस चला आता है और स्थूल देह में पुनः बस जाता है। समझे? अतः मनुष्य की सूक्ष्म देह से भी मनुष्य को सूक्ष्म देह से भी स्वतंत्र होना पड़ता है। ये स्वतंत्रता मुक्त लिंग कहलाती है ना? आगे ज्यों ही उनकी मुक्ति के लक्षण प्रकट हुए, किसके मुक्ति के लक्षण प्रकट हुए? किसके? ध्रुव महाराज के। उन्होंने आकाश से नीचे उतरते हुए अत्यंत सुंदर विमान को देखा। ध्रुव महाराज ने क्या देखा? आकाश से उतर रहा है बहुत सुंदर विमान, मानो तेजस्वी पूर्ण चंद्रमा दसों दिशाओं को आलोकित करते हुए नीचे आ रहा हो। वो विमान किस लिए आ रहा था? ध्रुव महाराज को वैकुंठ में ले जाने के लिए आ रहा था। सात दर्श विमान आग्रियम नवसोभतरं ध्रुवः विभ्राजयन् दश दिशो राकापतिं व्यबोधितम्। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, ध्रुव महाराज देहात्म बुद्धि से मुक्त होकर दिव्य ज्ञान को प्राप्त थे, अतः वे दिव्य विमान को देख सकते थे जो पूर्णिमा जो पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशमान था। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ज्ञान से ऐसा कर पाना संभव नहीं, ऐसा ज्ञान तो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, किंतु भक्ति या कृष्ण चेतना की ओर क्रमशः अग्रसर होने से मनुष्य ज्ञान के इस पद को प्राप्त कर सकता है। अब ध्रुव महाराज ने क्या देखा कि विमान में भगवान विष्णु के दो अत्यंत सुंदर पार्षद थे। उनके कितनी भुजाएं थी? चार भुजाएं। दो पार्षद और दोनों के चार भुजाएं, श्याम रंग की शारीरिक कांति, अत्यंत तरुण और उनके नेत्र लाल कमल के समान थे। हाथों में गदा धारण किए हुए थे, उनकी वेशभूषा अत्यंत आकर्षक थी, मुकुट धारण किए थे, हार बाजूबंद और कुंडल से सुशोभित थे। तत्रानुदेव प्रवरौ चतुर्भुजौ श्यामो किशोर वरुणं स्थितावस्तम विगदाम सुवासत किरीटहारांगद चारु कुंडल। तात्पर्य कृपा लिखते हैं, विष्णु लोक के वासी भगवान विष्णु के ही समान शारीरिक लक्षण वाले होते हैं। देवी गदा शंख कमल और चक्र धारण करते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि उनके चार हाथ थे और वे सुंदर वस्त्रों से आभूषित थे। उनके शारीरिक अलंकरण का वर्णन विष्णु से मेल खाता था, अतः विमान द्वारा जो दो असामान्य व्यक्ति आए थे वे विष्णु लोक से सीधे आए थे। अब ध्रुव महाराज क्या करते हैं? उन्होंने देखा कि असाधारण पुरुष श्री भगवान के प्रत्यक्ष दास हैं। ध्रुव महाराज तुरंत उठ खड़े हुए, बैठे थे, लेकिन जब देखा कि वे दो भगवान के पार्षद आए हैं तो क्या किया उन्होंने? जल्दी से खड़े हो गए, किंतु हड़बड़ाहट में जल्दी के कारण वे उचित रीति से उनका स्वागत करना भूल गए। अब उनको समझ नहीं आ रहा कैसे स्वागत करें। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर केवल नमस्कार किया और भगवान के पवित्र नामों की महिमा का जप करने लगे। विज्ञायता उत्तम गाय किंकरां वभ्युत्थितां साधु स्मृते क्रम नाम नामामी गृणन मधुजसां पार्षद प्रधानामिति संगतांजलि। हम ध्रुव महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में सदैव लीन रहते थे। उनका हृदय कृष्ण से पूरित था। जब परमेश्वर के दो दास जिनके नाम सुनंद और नंद थे, जो भगवान के पार्षद आए ध्रुव महाराज को लेने के लिए विमान में, उनके नाम क्या थे? सुनंद और नंद। हंसते हुए उनके पास प्रसन्नता पूर्वक पहुंचे, विमान से उतरे और ध्रुव महाराज के पास प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए आए। तो ध्रुव महाराज नम्रता पूर्वक सिर नीचे किए खड़े हो गए। तब उन्होंने इस प्रकार से संबोधित किया। तम कृष्ण पादाभिनिविष्ट चेतसं बद्धांजलिं प्रस्त्रय नम्रकंदरं सुनंद नंदा उपसृत्य सस्मृतं प्रत्युचतुः पुष्करनाभसम्मतः। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, वैकुंठ लोक में सभी जीवात्माएं श्री भगवान के आदेशों का उल्लंघन न करने के कारण उनके साथ एक आत्म रहती हैं, किंतु भौतिक जगत में वे अनुकूल नहीं हैं, वे प्रतिकूल रहते हैं। इस मानव जीवन को अनुकूल बनाने की शिक्षा दी जाती है। समाज में ये शिक्षा प्रदान करने के लिए ही कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भौतिक प्रकृति के नियम अत्यंत कठोर हैं, कोई भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकता, किंतु जो मनुष्य शरणागत होकर परमेश्वर के आदेश का पालन करता है, वह सरलता से इन कठोर नियमों को जीत लेता है। ध्रुव महाराज का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। श्री भगवान के आदेशों के प्रति सम्मत होकर और उनके प्रति प्रेम उत्पन्न करके ही ध्रुव को विष्णु की आज्ञाकारी दासों के प्रत्यक्ष दर्शन का अवसर प्राप्त हो सका। जो ध्रुव के लिए संभव था, वो सबके लिए भी हो सकता है। जो कोई भी गंभीरता से भक्ति में लग जाता है, वही समय आने पर वैसी जीवन सिद्धि प्राप्त करता है। अब आगे क्या हुआ? विष्णु के दोनों आज्ञाकारी पार्षद सुनंद और नंद ने कहा, क्या कहा? हे राजन, आपका कल्याण हो, हम जो कहें कृपया उसे ध्यान पूर्वक सुनो। जब आप 5 वर्ष के थे तो आपने कठिन तपस्या की थी और उससे श्री भगवान को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया था। भो भो राजन सुभद्रम ते वाचम नो वहिता श्रणु यह पंचवर्ष तपसा भवान देवम मति त्रिपं। तात्पर्य प्रभु लिखे हैं, जो ध्रुव महाराज ने किया था वो सबों के लिए संभव है। किसी भी 5 वर्ष के बालक को शिक्षित किया जा सकता है और कुछ ही काल में उसे श्री कृष्ण चेतना का बोध हो सकता है। दुर्भाग्यवश ऐसी शिक्षा का विश्वभर में अभाव है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अग्रणी पुरुषों का कर्तव्य है कि वे विश्व के विभिन्न भागों में बच्चों के प्रशिक्षण संस्थान खोलें, जिनमें 5 साल के बच्चे भर्ती हों। इस प्रकार ऐसे बालक ना तो हिप्पी बनेंगे, न समाज के बिगड़े बालक रहेंगे, अपितु वे भगवत भक्त हो जाएंगे। तब विश्व का मुखड़ा स्वतः बदला दिखेगा। अब भगवान के पार्षद ध्रुव महाराज से क्या कहते हैं? हम उन श्री भगवान के प्रतिनिधि हैं, जो समस्त ब्रह्मांड के सृष्टा हैं और सार्ग धनुष को धारण करते हैं। हमें विशेष रूप से भेजा गया है कि हम आपको वैकुंठ में ले जाएं। तस्याखिले जगन्धातुर आवाम देवस्य सार्गिनः पार्षदाव्य है संप्राप्त ने तुम ताम भगवत पदम। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनके दिव्य लीलाओं को जानकर कोई भी व्यक्ति जो ये जानता है कि मैं कौन हूँ, किस प्रकार प्रकट होता हूँ, और किस प्रकार कर्म करता हूँ, तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का भागी बन जाता है ध्रुव पर। भगवत गीता का ये नियम लागू होता है। उन्होंने तपस्या द्वारा आजीवन श्री भगवान को समझने का प्रयास किया। अब इसका फल ये मिला कि वे भगवान के पार्षदों के साथ वैकुंठ जाने के योग्य थे। तो इस तरह से हमने चर्चा की ध्रुव महाराज के जो है जीवन से। हमने आज भगवद गीता का श्लोक समझा और भगवान यही कह रहे हैं कि योगी का मतलब ये होता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल, कि वो शरीर को छोड़ता है और जो है उसको दिव्य शरीर प्राप्त होता है और दिव्य शरीर के द्वारा वो भगवान के दिव्य विमान को देखता है, भगवान के दिव्य विमान में बैठता है और भगवान के धाम में जाता है ना। तो वो है पश्यंती, यदंतो योगिनश्चैनं पश्यंती, मतलब ये सब देखते हैं योगी लोग। सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता है, विमान लोग नहीं देख पाते कि विमान आया है, आप समझे ना। लेकिन भगवान विमान भेजते हैं अपने भक्त के लिए, सब कोई नहीं देख सकता है ना। और ध्रुव महाराज की तो स्थिति ऐसी है कि उन्होंने अपना शरीर भी नहीं छोड़ा, उसी शरीर से ही वो भगवान के विमान में बैठ गए है ना। बल्कि मृत्यु, साक्षात मृत्यु उनके सामने आया तो उनके सामने झुक करके बैठ गया। तो उन्होंने क्या किया, ध्रुव महाराज ने अपना शरीर नहीं छोड़ा बल्कि मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान में चढ़ गए। उन्होंने उसको सीढ़ी का जो ना काम लिया, मृत्यु के सिर को सीढ़ी मान करके पैर रखा और विमान में चढ़ गए। शरीर भी नहीं छोड़ा ध्रुव महाराज ने, है ना। तो ऐसा प्रभाव है भक्तों का। तो यहाँ पर वो उन योगियों की बात की जा रही है जो ऐसे योगी होते हैं। लेकिन फिर भगवान कहते हैं यदम तो अपकृत आत्मानो, लेकिन जिन्होंने अपने मन को भगवान के चरणों में नहीं लगाया है वो अकृत आत्मा है, अकृत आत्मा है। तो वो नहीं देख पाते हैं ये सब रहस्य को है? तो वो ऐसे लोगों की तुलना प्रभुपाद ने किससे की है, कौन लोग हैं वो ऐसे जो तथाकथित योगी जो आसन करते हैं, आसन के द्वारा जो है रोगों को दूर करते हैं, अपने स्वास्थ्य को सुधारते हैं और वो योगाचार्य कहलाते हैं, बड़े बड़े योगी कहलाते हैं, है ना। तो वे जो है असली योगी नहीं है, शहरों में जो है ना दिखावा करते हैं, वो योगा टीचर कहलाते हैं, योगा टीचर। हम तो योगा सिखाते हैं, योगा टीचर हैं, घर घर में जाते हैं योग सिखाने के लिए। जबकि प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि ध्रुव महाराज जो है ना उस अष्टांग योग का अभ्यास करने के लिए कहाँ गए, बद्रिकाश्रम गए, बिल्कुल एकांत में गए, है ना। लेकिन कलयुग में उस प्रकार का योग संभव नहीं है, है? कलयुग में कौन सा योग संभव है, संकीर्तन योग, है ना। यज्ञ संकीर्तन पायर इजंति ही तुम्हें दशा, प्राय संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा की जाती है कलयुग में। अब किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, तो इनका प्रश्न है कि ये कहा जाता है कि ध्रुव महाराज को अलग से एक लोक मिला हुआ है और यहाँ कहा गया कि भगवान के वैकुंठ में गए ध्रुव महाराज, दोनों बातें सही हैं। वो भी एक वैकुंठ है, वैकुंठ का मतलब क्या है, जिसमें किसी प्रकार की कुंठा नहीं है। और बहुत से वैकुंठ हैं और ये जो वैकुंठ है एक विशेष वैकुंठ है जिसमें कि ध्रुव महाराज ही पहली बार गए। भगवान ने कहा कि अभी तक और कोई नहीं गया है इस लोक में, ये स्थान जो है मैंने तुम्हारे लिए रखा है। क्योंकि ध्रुव महाराज ने यही चाहा था कि मुझे ऐसा स्थान चाहिए जहाँ जिसको ना तो मेरे पिता ने प्राप्त किया है, ना मेरे पिता के पिता ने प्राप्त किया है, ना पिता के पिता के पिता ने प्राप्त किया है। ध्रुव महाराज के पिता थे वो तानपाद के पिता थे मनु, स्वयंभू मनु, और स्वयंभू मनु के पिता हैं ब्रह्मा जी, तो किसी को प्राप्त नहीं हुआ है, वो स्थान मुझे चाहिए। तो यद्यपि भौतिक जगत में ही वो स्थान है ध्रुव लोक, लेकिन भगवान ने उसको भी एक वैकुंठ बना दिया है। इस भौतिक जगत के अंदर भी एक वैकुंठ है, और वैकुंठ का जो विमान है भगवान ने भेजा है, अपने वैकुंठ से भेजा है, और ध्रुव जी के वैकुंठ में ध्रुव जी को छोड़ा उस विमान में। नंद और सुनंदन जो पार्षद थे वो विमान लेकर के आए और ध्रुव जी को ध्रुव लोक में छोड़ करके उस वैकुंठ में चले गए जहां भगवान है, और ध्रुव जी को जो है ना एक अलग से ही वैकुंठ दे दिया, एक अलग ही वैकुंठ का स्वामी बना दिया ध्रुव जी को। इसको सारसी भी कहते हैं, सारसी मुक्ति। सारसी का मतलब भगवान के समान ऐश्वर्य। तो चूंकि ध्रुव जी ने ऐसा चाहा था कि मैं स्वतंत्र रूप से ऐसा पद प्राप्त करूं जहां मुझे किसी के सामने झुकना नहीं पड़े, तो भगवान ने ऐसा पद दिया ध्रुव महाराज को। इनका प्रश्न है कि ऐसा कहा जाता है कि ध्रुव महाराज वहां पर खुश नहीं है। नहीं, वहां पर खुश हैं ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज खुश नहीं थे वो अपने पिता के राज्य में जाने के लिए। तो भगवान ने आदेश दिया कि तुम अभी अपने पिता के राज्य में जाओ और 36,000 साल तक अपने पिता का राज्य भोगो। तो ध्रुव महाराज खुश नहीं थे क्योंकि अपने पिता को छोड़ करके आए और अब अपने पिता के पास नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनके पिता ने उनके साथ में कुछ ऐसा व्यवहार किया था, मतलब उपेक्षा का व्यवहार किया था, स्नेह नहीं था उनके पिता में। उनकी सौतेली माता सुरुचि ने कुछ कठोर शब्द कहे और उनके पिता ने सुन लिए और कुछ उत्तर नहीं दिया, और उनकी सौतेली माता ने ध्रुव को पिता की गोद में बैठने से रोक दिया, तो उनके पिता ने ध्रुव का समर्थन नहीं किया, ध्रुव को सांत्वना नहीं दी, तो अपने पिता के पास जाना नहीं चाहते थे। लेकिन भगवान का यह कहना था कि अब तुम देखो जिस पिता ने तुम्हारा सम्मान नहीं किया था, अब देखो वो पिता तुम्हारा कितना सम्मान करता है। तो भगवान जो है ध्रुव जी को अपने पिता के पास भेज रहे हैं ये दिखाने के लिए कि अब तुमने क्योंकि मेरी शरण ली है, मुझे प्रसन्न किया है, तो अब देखते हैं कि कौन तुमसे नाराज होता है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टो भवती। अगर तुमने भगवान को प्रसन्न कर लिया तो पूरा जगत को तुमने प्रसन्न कर लिया, अब देखो तुम तुम्हारे पिता कितना तुम्हारा सम्मान करते हैं। तो ध्रुव महाराज नहीं जाना चाहते थे, लेकिन भगवान के सामने तो जवाब नहीं दे सके, लेकिन अनमने होकर के वो अपने पिता के राज्य में जा रहे थे। लेकिन बाद में फिर देखा ध्रुव महाराज ने क्या हुआ, अपने पिता के राज्य में जैसे गए तो उनको सूचना नहीं देनी पड़ी, पिता को जैसे सूचना मिली कि बालक आया है, तुरंत हाथी लेकर के आए और अपने बालक को हाथी में बैठाया, पूरे नगर को सजाया और फिर बहुत जो है स्वागत किया ध्रुव जी का पूरे नगर में। फिर महल में जब आए ध्रुव जी तो सुरुचि जो सौतेली माता थी उसने बड़ा सम्मान किया ध्रुव जी का, और सुनीति तो बहुत प्रसन्न हुई, उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। तो ध्रुव जी का फिर बड़ा सम्मान होने लगा घर में, है ना। तो इस तरह से भगवान दिखाना चाहते थे, लेकिन ध्रुव जी को जो है प्रसन्नता नहीं हो रही थी, क्योंकि जिस पिता को उन्होंने छोड़ा है वो उस पिता के पास क्यों जा रहे हैं। इसलिए उनका प्रश्न है कि जैसे प्रभुपाद जी देख रहे हैं कि जो भक्ति थोड़ी करता है और गिर जाता है वो ठीक है, ये जो बिल्कुल भक्ति नहीं करता है वो ठीक है, क्या ठीक है? प्रभुपाद जी ने क्या बताया, क्या ठीक है, क्या ठीक है? जो भक्ति करता है चाहे थोड़ी भक्ति करे और गिर जाए वो ज्यादा अच्छा है, जो ना करे भक्ति उसकी तुलना में, है ना। जैसे अजामिल था, उसने भक्ति करी फिर गिर गया, है ना, लेकिन फिर आगे चल करके नारायण के नाम से उसका उद्धार हो गया, है कि नहीं। इस प्रकार के प्रभुपाद के और भी कई शिष्य हुए हैं जो कि प्रभुपाद की सेवा में थे और बड़ी गंभीरता से प्रभुपाद जी का उन्होंने साथ दिया, सहायता की आंदोलन को फैलाने में, और बाद में फिर वो भक्ति से गिर गए। लेकिन आगे चल करके जैसे अजामिल का उद्धार हुआ उसी प्रकार से उनका भी जो है ना उद्धार हुआ। अंतिम समय में उनको प्रभुपाद की याद आई, कृष्ण की याद आई है? और कृष्ण के धाम में गए तो प्रभुपाद जी ने बताया एक प्रवचन है प्रभुपाद का। प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम इस समय जो कुछ कर रहे हो, मेरे साथ में जो सहायता कर रहे हो, ये तुम्हारी जो है ना संपत्ति सुरक्षित हो गई, ये तुम्हारे साथ रहेगी। अगर आगे चल करके तुम छोड़ भी दोगे तो ये संपत्ति तुम्हारे साथ रहेगी, आगे चल करके तुमको अवसर प्राप्त होगा इसका। तो प्रभुपाद जी बताते हैं है ना, लेकिन कोई व्यक्ति गंभीरता से करे, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। सुअल्पम थोड़ा करे लेकिन बहुत बढ़िया प्रकार से करे है ना, ये घटिया प्रकार से नहीं। अपराध कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, झूठा झूठ मूठ दिखा रहे हैं, ये दिखावा ये नहीं, गंभीरता से करो है ना। अपराधों से बच करके अगर करो भक्ति तो आगे चल करके अगर आप गिर जाते हैं तो भी कोई अशुभ नहीं है, कोई हानि नहीं है, है ना। तो भागवत में एक श्लोक है भी इस प्रकार का है ना, वो कैसा श्लोक है, त्यक्त्वा सुधर्मम चरणामुजम हरेर भजन पक्वोथ पतित तो यदि यत्रिक वा अभद्रम अभूतमुष्य किम को वाप्त कामो अभजताम सुधर्मतः। त्यक्त्वा सुधर्मम, संसार के सब धर्मों को त्याग करके भी त्यक्त्वा सुधर्मम चरणामुजम हरेर भजन, भगवान के चरण कमलों का भजन करता है कोई व्यक्ति और अपक्व होने के कारण, परिपक्व ना होने के कारण अगर वो गिर जाए, ये त्रिक वा भद्रम अभूतमस्यकिम, तो इस जीवन में या अगले जीवन में उसका कहाँ नुकसान है, उसका कहाँ अशुभ होता है, कहीं भी उसका अशुभ नहीं होता, अमंगल नहीं होता है। कोवार्थ आप तो अभजताम सुधर्मतः, लेकिन उसको क्या फायदा हुआ जिसने भगवान का भजन नहीं किया लेकिन बहुत धर्म का पालन किया, तो क्या फायदा हुआ है कि नहीं। तो गंभीरता से जिन्होंने जो कृष्ण का भजन किया है तो कृष्ण कभी भूलते नहीं उसको, जो एक बार भी कृष्ण को जो है सच्चे दिल से पुकार लेता है कि मैं आपका दास हूं, याचना करता है ना, तो कृष्ण उसको कभी फिर भूलते नहीं। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसिद्ध श्लोक है, सकृदेव प्रपन्ना है तमास्मित जयाजते अभियम सर्व भूतेभ्यो धाम में सुधर्मम। एक बार भी सच्चे दिल से अगर वो कहता है कि मैं तुम्हारा हूं, याचना करता है, तो उसको संपूर्ण प्राणियों से निर्भय कर देता हूं। लेकिन शरणागत होनी चाहिए कि हाँ मैं आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करूंगा, ये नहीं कि अपनी मर्जी से सब काम कर रहे हैं और कहते हैं मैं तो आपका आपका हूं, आपका बच्चा हूं, मैं आपका भक्त हूं, मैं आपका दास हूं। खाली कहने से, मुंह से बातें बनाने से कुछ फायदा नहीं, काम अपनी मर्जी से करते हैं, कुछ सुनते नहीं है, और फिर इधर से बोलते फिर उधर से बोलते हैं, बात को बदलते हैं, उलटते पुलटते बात को है ना, कोई बात करते हैं कोई मतलब ही नहीं होता, क्या कहते हैं कुछ करना कुछ नहीं है और बस बोलना है, उलट के पुलट के बातें बोलना, तो क्या फायदा। कोई काम करो तो गंभीरता से करो, अच्छी प्रकार से करो, ठीक से सुनो, ठीक से समझो, तब तो ठीक है, नहीं तो खाली बातें बनाने से थोड़ी होता है जो प्रभुपाद जी के साथ थे, गंभीरता से 16 माला का जाप किया, 4 नियमों का पालन किया, सवेरे उठते मंगल आरती अटेंड करते, प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछते है ना, प्रचार करते है ना, उन्होंने गंभीरता से भक्ति के नियमों का पालन किया। खाली बातें बनाने से नहीं है कि नहीं, खाली बातें बनाते हैं और कुछ करते धरते कुछ नहीं है ना, मैं तो बच्चा हूं, मैं तो बस ऐसे ही, ऐसे थोड़ी हुई, ऐसे काम नहीं चलता है। बच्चा भी जब बड़ा हो जाता है तो मार खाता है, मार खाता है जब उल्टा सीधा काम करता है, समझदार हो गया बेसमझी का काम करता है तो मार खाता है, ऐसे थोड़ी है। तो इस तरह से नहीं होता है, कि कोई व्यक्ति अपने को बच्चा क्या करे, कोई बात समझे नहीं, समझना नहीं चाहता है, कोई बात सीखना नहीं चाहता है, कोई काम नहीं करना चाहता है। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि कहा जाता है कि जो शुद्ध भक्त होता है उसके ऊपर की 7 पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं, तो ध्रुव महाराज की तो ऊपर की 4 ही पीढ़ियां थी, तो 7 पीढ़ियां फिर कैसे मुक्त होंगी? तो इसमें कोई समस्या थोड़ी है। अगर 4 ही पीढ़ियां हैं, उनके ऊपर कोई नहीं है, उनके ऊपर भगवान है, तो समस्या क्या है? 7 पीढ़ियां तक अगर मुक्त हो जाती हैं, है ना, तो मतलब कि 7 पीढ़ियों तक लाभ होता है जो शुद्ध भक्त होता है। लेकिन अगर 7 पीढ़ियां नहीं है तो ना रहे तो क्या दिक्कत है? तो इसमें आपकी क्या समस्या है? अगर 7 से ज्यादा पीढ़ियां हैं तो 7 पीढ़ियों तक तो उद्धार हो जाता है। लेकिन 7 पीढ़ियों तक उद्धार होने का ये मतलब नहीं है कि वो अपना सोते सोते ही भगवान के धाम में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये मत समझना कि भाई हमारे परिवार में कोई शुद्ध भक्त हो गया तो हम तो सोते सोते भगवान के धाम में चले जाएंगे, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मतलब कहने का यह है कि हम नरक में नहीं जाएंगे, हम नरक में नहीं जाएंगे अगर हमारे परिवार में कोई शुद्ध भक्त हो गया है, हम नरक में नहीं जाएंगे, है ना। लेकिन जो कर्म दंड है वो भोगना ही पड़ेगा। जैसे पृथु महाराज के पिता थे बेन, तो नरक में जाना था उनको, क्योंकि वो बहुत अपराधी थे। अपने राज्य में जो है ना भगवान का सब जो ना उन्होंने जो पूजा है भगवान की वो बंद करा दी थी, और कहते थे कि राजा ही भगवान होता है, मेरी पूजा करो। तो बहुत मतलब वो थे, नरक में जाना था। लेकिन पृथु महाराज चूंकि शुद्ध भक्त थे, उनके पुत्र, तो नरक में नहीं गए, ले अगले जन्म में कोढ़ी बने वो, आप समझे। तो उद्धार का मतलब ये नहीं है कि फिर कोई व्यक्ति सोचे चलो भाई हमारा लड़का शुद्ध भक्त बन गया तो हम जो चाहे अपनी मर्जी से काम करें, हम तो भगवान के धाम में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उद्धार का मतलब है कि नरक जाने से तो बच गया, बहुत बड़ा लाभ हुआ, लेकिन तो भी कोई कम यातना नहीं भोगनी पड़ती है। लाभ बहुत है कि भाई नरक में नहीं गए, लेकिन कोई कष्ट कम नहीं होता है। ये भी कोई कम कष्ट की बात नहीं है, बहुत कष्ट की बात है कि उसको नाली में कीड़ा बनना पड़े, नाली का कीड़ा बने, तो वो भी नरक की यातना के समान है। लेकिन नरक की यातना तो बहुत ज्यादा है, असीमित है, उसकी तुलना में उसको बहुत फायदा हुआ। लेकिन तो भी ये नहीं समझना कि कर्म का दंड भोगना नहीं पड़ता है, भोगना पड़ता है। तो उनको अवसर प्राप्त होता है, अवसर प्राप्त होता है, लेकिन ये नहीं। अब जैसे प्रभुपाद जी के लड़के थे तो उन्होंने प्रभुपाद जी का साथ नहीं दिया, तो आप कहो कि भाई वो तो भगवान के धाम में चले गए। प्रभुपाद की पत्नी ने प्रभुपाद का साथ नहीं दिया तो आप कहो वो तो भगवान के धाम चली गई, नहीं। जब कहा जाता है कि मुक्ति 7 ऊपर की पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं और 14 नीचे की पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं, इसका मतलब नरक से मुक्त हो जाती हैं, नरक में नहीं जाते हैं। लेकिन पशु पक्षी की योनि में भी जा सकता है, कीड़े भी बन सकते हैं, और अगले जन्म में मनुष्य बन सकते हैं, और उसका भी बहुत दंड भोगना पड़ता है, बहुत कष्ट भोगना पड़ सकता है, आप समझे ना। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो शुद्ध भक्त हैं वो 5 प्रकार की मुक्तियां नहीं चाहते हैं, लेकिन ध्रुव महाराज ने तो जो है नंद और सुनंद के द्वारा जो लाया गया विमान है उसको स्वीकार किया और फिर भगवान के बैकुंठ में गए और सारस्वती मुक्ति उनको प्राप्त हुई। यदि कहा गया है कि भक्त लोग 5 प्रकार की मुक्तियां नहीं चाहते हैं तो इसका मतलब ये है विनामत सेवनम जना, कपिल भगवान ने कहा है दीयमानम न गृहणन्ति विनामत सेवनम जना, उनको 5 प्रकार की मुक्तियां देने पर भी वो नहीं ग्रहण करते बिना मेरी सेवा के। मतलब जो दूसरे योगी होते हैं, जो भक्त नहीं है, तो वे जो है मुक्ति पाना चाहते हैं भगवान की सेवा के बिना, आप समझे। जो भक्त नहीं है वो मुक्ति पाना चाहते हैं, एवं भगवान की सेवा नहीं चाहते हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो भगवान की सेवा के बिना किसी प्रकार की मुक्ति नहीं पाना चाहते हैं। वे सेवा से मुक्ति नहीं पाना चाहते हैं, आप समझे। जो अभक्त होते हैं भगवान की सेवा से मुक्ति पाना चाहते हैं, है ना। ये जो भक्त हैं भगवान की सेवा से बंधना चाहते हैं, है? फिर कोई भी मुक्ति प्राप्त हो उनके लिए सब बराबर है, चाहे वो स्वर्ग हो और चाहे वैकुंठ हो और चाहे नरक हो, सब बराबर है। उनको चाहिए भगवान की सेवा, तो वो भगवान का प्रसाद मान करके वो वैकुंठ में भी जाने के लिए तैयार हैं। ये भगवान की सेवा है, है? और जो है भगवान की इच्छा मान करके, भगवान की सेवा मान करके वो नरक में जाने के लिए भी तैयार हैं, है? तो वो कैसे श्लोक है कि स्वर्गापवर्ग नरकेशु अभी तुल्यार्थ दर्शना नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। जो भगवान के परायण है वो किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होते हैं। स्वर्गापवर्ग नरकेशु अभी तुल्यार्थ दर्शना, चाहे स्वर्ग हो चाहे वैकुंठ हो चाहे नरक हो, उनको बराबर मतलब भाव रहता है, कोई अंतर नहीं है, आप समझे। तो जो है वो यही चाहते हैं अविचल भक्ति, भगवान के चरणों में अविचल भक्ति प्राप्त हो। मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतान भक्ति रहे तो की रही, है ना, अहे तो की भक्ति हो जन्म जन्म में। और कोई प्रश्न? धन्यवाद धन्यवाद। इनका 6 प्रश्न है। इनका प्रश्न है कि 7 पीढ़ियां ऊपर की और 14 पीढ़ियां नीचे की हैं, तो प्रभुपाद जी भी जो है ना अपनी शिष्य परंपरा में जो है ना 14 पीढ़ियों का उद्धार कर देंगे। हाँ, अगर हम लोग जो है प्रभुपाद जी से जुड़े हुए हैं, मतलब कहने का यह है कि शुद्ध भक्त के साथ में अगर हमने अपना कोई संबंध जोड़ लिया, चाहे वो पिता के रूप में संबंध जोड़ लें चाहे पुत्र के रूप में संबंध जोड़ लें, आप समझे, चाहे गुरु के रूप में संबंध जोड़ लें, चाहे पति के रूप में संबंध जोड़ लें, किसी के रूप में शुद्ध भक्त से अगर अपना संबंध हम जोड़ लेते हैं तो जो ना तेव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारा अपावृतम। यही आसक्ति जो है इस संसार में जो है बड़ा भारी बंधन है, वही आसक्ति अगर साधु के साथ की जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, तो मुक्ति का जो है खुला हुआ द्वार है। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपना नाम जो है इस कौन के जितने भी कागज हैं उनमें जोड़ देकर के लिखवाया कि संस्थापक आचार्य हैं, ये मेरा नाम होना चाहिए। इस कौन के जितने भी पेपर होंगे प्रभुपाद जी का नाम होना चाहिए, है ना। तो ये प्रभुपाद जी ये कोई इच्छा नहीं है कि उनका नाम हो, लेकिन ये जो है ऐसा कर रहे हैं उनके जो अनुयायी हैं उनके लाभ के लिए कि प्रभुपाद के नाम से भी जो है ना उनका उद्धार हो जाएगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति बहुत जघन्य कर्म भी कर रहा है तो प्रभुपाद से संबंध होने के कारण वो नरक में नहीं जाएगा, नरक में जाने से बच जाएगा और उसको फिर अवसर प्राप्त होगा। लेकिन ये नहीं समझना कि दंड नहीं मिलेगा, दंड जो है भोगना पड़ेगा। आपका प्रश्न? हाँ, इनका प्रश्न है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं अगर उनके जो शिष्य उतने योग्य नहीं है तो जो गुरु हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने धाम ले जाऊंगा, तो इसका क्या मतलब है? हाँ, प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम अगर मेरी धोती का कोना पकड़ लो, किसी प्रकार पकड़े रहो, तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा भगवान के धाम में। प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम अगर मेरी धोती का एक कोना अगर पकड़े रहोगे, छोड़ोगे नहीं, तो भी तुम चले जाओगे। इसका यही मतलब है कि तुम नियमों को जो ना किसी प्रकार छोड़ो नहीं, ठीक है ना, नियमों का जो ना पालन करो, प्रभुपाद जी के आदेशों को जो ना किसी प्रकार से भी भूलो नहीं, यही मतलब है। प्रभुपाद से संबंध अपना जो ना बनाए रखो, ठीक है ना, प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए कार्य करते रहो, है ना, अपनी मर्जी से नहीं कि हम अपनी मर्जी से, है ना, नहीं नहीं हम तो आपके बच्चे हैं, हम तो आपके बच्चे हैं, सब काम करते अपनी मर्जी से, कोई बात मानते नहीं, मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, ये नहीं है ना, ना? अगर आप जो है आदेशों का पालन करते हैं और आप उनको खुश करना चाहते हैं, है ना, तो यही मतलब है। जैसे कोई बच्चा है अपने पिता को समझता है कि उनकी क्या इच्छा है, मुझे उनको प्रसन्न करना है, या पिता अपने बच्चे के बारे में सोचता है कि अपने बच्चे की कैसे मैं देखभाल करूं, तो वो चिंता में रहता है, हमेशा उसकी चिंता रहती है, है ना। तो अगर आप जो है इस प्रकार से अगर चिंता रखोगे कि नहीं मुझे जो है प्रभुपाद के आदेश के अनुसार कार्य करना है, प्रभुपाद को प्रसन्न करना है, है ना, ये छल कपट नहीं, हृदय जो ना होना चाहिए साफ, जिसमें छल कपट झूठ कपट ये नहीं होना चाहिए, धोखा नहीं। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि योगी लोग यत्न करते हुए अपने अंदर देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, इसका क्या मतलब है? कौन बताएगा? आज के श्लोक में भगवान ने कहा है कि योगी लोग प्रयत्न करते हुए अपने अंदर मतलब शरीर के अंदर आत्मा को देखते हैं। तो इसमें हमने जो ध्रुव महाराज का उदाहरण दिया, तो उसमें क्या समझाया? हाँ, तो वे जो है ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, अपने आप को शरीर से अलग मानते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री राधा पार्थ श्री ललिता विशाखा की, श्री श्री गोंडताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, जय हरे कृष्ण।